हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अगले दिन संडे होने की वजह से आंशी घर पर ही थी। वो लावण्या की दी हुई फाइल्स पर काम कर रही थी। वहीं अर्जुन उसके पास बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहा था। उसकी दादी प्रीतो जी भी उनके पास व्हीलचेयर पर बैठी थीं और उनके हाउसमेट शांति उनके पैरों की मालिश कर रही थी। शांति ने आंशी को काम करते देखा तो कहा, आंशी दीदी, मुझे लगा था हमें ही संडे की छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ तो आप भी संडे के दिन काम कर रही हैं। हाँ शांति दीदी, कुछ लोगों की किस्मत अच्छी नहीं होती और उन्हें बुरे बॉस मिलते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। आंशी ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया, हाय मेरी बच्ची, कितनी दुबली हो गई है। एक तो ऐसे ही उस ब्लास्ट में इसको इतनी चोटें लगी, सी ऊपर तो ऑफिस जाते ही इतना काम करने को दे दिया। सच में तुम्हारा बॉस बहुत ही निर्दयी है, प्रीतु जी ने मुंह बनाकर कहा। अर्जुन भैया का अच्छा है, आराम से मजे में गेम खेल रहे हैं। ऐसे नहीं आंशी दीदी की मदद कर दे, शांति ने कहा। ओ हेलो, इसका और मेरा काम अलग है। मैं उसकी तरह छोटी पोजीशन पर नहीं हूँ और ना ही मेरा काम इस तरह की फाइल्स पढ़ना है। जिसका जो काम होता है वो उसी को करना चाहिए, अर्जुन मुंह बनाकर बोला। वो तीनों के आंशी के सामने बातें करते हुए बहस करने लगे। इस वजह से उसके काम में डिस्टर्बेंस हो रहा था। आंशी सोफे पर से उठी और तेज आवाज में बोली, भगवान के लिए आप लोग चुप हो जाइए, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। आप लोग बोलोगे तो जो हो रहा है वो भी नहीं होगा। ऐसा कर कुड़िए, तू अंदर जाकर काम कर ले, मैं तेरे लिए शांति से गर्मा गर्म परांठे और ऊपर खूब सारा मक्खन वालकर भेजती हूँ, प्रीतो जी ने प्यार से कहा। हाँ, ताकि फिर मैं उन्हें खाकर मोटी हो जाऊँ। दादी, ऐसे ही घर पर रहते रहते मेरा वेट बढ़ गया है, अगर मैं मोटी हो गई तो, आंशी बोल रही थी तभी शांति उसकी बात काटते हुए बोली, फिर तो आंशी दीदी की शादी के लिए मोटा लड़का देखना पड़ेगा। हाँ, फिर वो विदिक राणा उसमें एक सुई चुभाकर ही उसकी सारी हवा निकाल देगा, अर्जुन हंसकर बोला। उसके ऐसे बोलने पर आंशी सहित प्रीतो जी और शांति दीदी उसकी तरफ घूर कर देखने लगीं। अर्जुन तुरंत चुप हो गया। शांति ने कहा, ये विदिक राणा कौन है दादी? कहीं आंशी दीदी ने अपने लिए कोई लड़का तो पसंद नहीं कर लिया है? आंशी, प्रीतो जी ने आंशी की तरफ देखकर कहा। उनके कुछ आगे पूछने से पहले ही आंशी बीच में बोल पड़ी, दादी ऐसा कुछ नहीं है, आप जानती है ना अर्जुन को मजाक करने की आदत है, जैसा आप लोग सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, आंशी ने सफाई दी। हाँ दादी, ये ठीक कह रहा है, मैं मजाक कर रहा था, अर्जुन ने अपनी तरफ से बात संभालने की कोशिश की। उसने इशारों इशारों में आंशी को सॉरी कहा। वो चारों आपस में बात कर रहे थे तभी आंशी के पास लावण्या का कॉल आया। उसने कॉल पिक करके कहा, अभी फाइल्स रेडी नहीं हुई है मैम। हाँ, लेकिन मुझे वो फाइल्स अभी चाहिए, लावण्या ने कहा। अगर आपको काम करवाना ही नहीं था तो फिर वो फाइल्स मुझे दी ही क्यों? आंशी को लावण्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने ये सोचकर तुम्हें फाइल्स दी थी कि तुम रात को उन पर काम करोगी, पर अमन सही कहता है, तुम अपने काम को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। हम लोग तुम्हारी तरह नहीं है, मुझे अपनी मीटिंग में उनकी जरूरत पड़ेगी, तुम अभी उन्हें लेकर अमन के घर आओ। क्या, अमन सर के घर पर? उनके घर पर क्यों? आंशी ने हैरानी से पूछा। क्योंकि इस वक्त मैं वहीं पर हूँ, तुम्हारे पास एग्जैक्टली आधे घंटे है, आ जाना तुम, घर तो जानती हो ना उनका। आंशी ने उसकी बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया। उसके अचानक यूं फाइल मंगाने पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। लगता है कि आंशी दीदी की बॉस सच में बहुत सख्त है, तभी घर पर भी चैन से नहीं रहने देती। मैं तो कहती हूँ ऐसी नौकरी को छोड़ देना चाहिए बीजी, ये तो आप मुझे इतने प्यार से रखती हैं बीजी, तभी मैं यहाँ काम करती हूँ, वरना जहाँ हमारी इज्जत नहीं वहाँ हमें काम नहीं करना चाहिए, शांति ने कहा। अर्जुन, तो अभी के अभी खड़े हो और गाड़ी निकालो, मुझे इन फाइल्स को अमन सर के घर पर देना है। आंशी फाइल उठाकर बाहर की तरफ जाने लगी तभी प्रीतु जी ने कहा, अरे इस हाल में कहाँ जा रही हो, तुमने तो घर के कपड़े पहन रखे हैं, ऐसे कपड़ों में तुम अपने बॉस के घर जाओगी क्या? दादी ठीक कह रही है, तुम तो नहाई तक नहीं, बस ऐसे ही मुंह उठाकर जा रही हो, क्या इम्प्रेशन पड़ेगा उस पर? अर्जुन के कहने पर आंशी दौड़कर अंदर गई और खुद को आईने में देखा। उसने नॉर्मल ट्राउजर और टी शर्ट पहनी थी, बालों में चोटी बनी थी, वो भी बिखरी हुई थी। नहीं नहीं, मैं ऐसे उसके सामने नहीं जा सकती, उसकी गर्लफ्रेंड तो एनी टाइम फैशन क्वीन बनकर रहती है, अगर मुझे उसे इम्प्रेस करना है तो अच्छा बनकर जाना होगा। आंशी जल्दी से बाथरूम में गई और कुछ देर बाद नहाकर बाहर निकली। उसने कपड़ों की अलमारी खोल रखी थी, ऐसा क्या पहनूं जो वो मुझे देखे तो देखते ही रह जाए। सोचते हुए आंशी की नज़र सामने में गई। उसने एक रेड कलर की साड़ी निकाल ली और आईने में खुद के ऊपर लगाकर देखने लगी। साड़ी कुछ भी कहो, साड़ी की तो बात ही अलग है। आप कितने भी मॉडर्न बन जाओ पर साड़ी की जगह कोई नहीं ले सकता। पीछे से अर्जुन ने उसे साड़ी लपेटे हुए देखा तो हंसते हुए अंदर आया। हाँ, अब यही बाकी रह गया था। कौन सा तू अपने ससुराल जा रही है जो साड़ी पहनकर देख रही है? मुझे नहीं पता, मुझे अपना इम्प्रेशन अच्छा करना है। लेकिन साड़ी पहनकर अपने बॉस के घर फाइल्स देने कौन जाता है बेवकूफ़ लड़की? अर्जुन झुंझलाकर बोला। देख, मुझे पहले ही देर हो गई है, अब मेरा टाइम वेस्ट मत कर, चल बाहर जाओ और मुझे तैयार होने दे। आंशी ने अर्जुन को कमरे से बाहर निकाल दिया। उसने वो लाल साड़ी पहनी और अपने बालों को स्ट्रेट कर लिया, जिससे उसके बाल थोड़े और लंबे लग रहे थे। उसने साड़ी के साथ लंबे झुमके पहने। खुद को आईने में देखकर आंशी ने नजरें झुका ली। जब मैं खुद को ही इतनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ तो उसे तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगूंगी। आंशी ने फाइल्स उठाई और बाहर आ गई। उसे इस तरह साड़ी में देखकर प्रीतो जी और शांति दीदी उसकी तरफ आंखें फाड़ कर देख रहे थे। आंशी दीदी, आप इतनी तैयार क्यों हुई हैं? कहीं आपने फिर से शादी करने का मन तो नहीं बना दिया? आप फोटो सेशन के लिए जा रहे हैं क्या? देखो, मुझे छोड़कर मत जाना, पिछली बार भी मैं लेकर गई थी, शांति ने कहा। हाँ यो, मेरी बेटी बहुत ही सोनी लग रही है, इधर आ, तेरे काला टीका लगा दूं, कहीं नजर न लग जाए। प्रीतो जी व्हीलचेयर्स खिसकाकर आंशी के पास आई और उसकी बलाइयां ली। देखो, अगर तुम्हें इस तरह तैयार होकर उसके घर जाना है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, अर्जुन मुंह बनाकर बोला। अच्छा दादी, मैं चलती हूँ, आने में थोड़ी देर हो सकती है। अब बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा खा पी कर ही आएंगे ना, आपको कुछ चाहिए तो कॉल कर दीजिएगा, आंशी ने कहा और अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगी। अर्जुन के समझाने के बावजूद आंशी ड्रेस चेंज करने को तैयार नहीं थी। दोनों उसी तरह अमन के घर पर पहुंचे। वो दोनों वहां पहुंचे तो उन्हें काफी हैरानी हुई, क्योंकि उसका घर सजा हुआ था और वहां का माहौल देखकर लग रहा था कि वहां कोई समारोह हो रहा हो। मैंने साड़ी पहनकर बिल्कुल ठीक किया, देखो यहां पर कोई फंक्शन चल रहा है, उसकी फैमिली पर मेरा अच्छा इम्प्रेशन बनेगा। आंशी ने अपनी साड़ी को ठीक किया और अंदर जाने लगी। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, ये अपने साथ साथ मुझे भी मुसीबत में डाल देंगी। अर्जुन तेज कदमों से चलते हुए उसके पीछे आ रहा था।
अमन इस बात से बेखबर था कि लावण्या ने आंशी को घर पर बुलाया है। ब्लास्ट के बाद अमन ने अपनी और लावण्या की सगाई को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया था। उनकी सगाई आज के दिन हो रही थी, वहां सिर्फ उन दोनों की फैमिली मौजूद थी। ये एक छोटा फंक्शन था जहां बाहर के लोगों को नहीं बुलाया गया था। वो दोनों वहां पहुंचे तब उनकी सगाई की रस्म लगभग शुरू ही होने वाली थी। चेतना जी ने आंशी को वहां देखा तो वो काफी खुश हुईं। अमन, तुमने बताया नहीं, तुमने ऑफिस के लोगों को भी इनवाइट किया है। हाय, ये इस लाल साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल किसी परी की तरह। चेतना जी मुस्कुराते हुए आंशी की तरफ जा रही थी। आंशी को साड़ी में देखकर लावण्या को भी बहुत गुस्सा आया। उसने अपने और अमन के लिए लाइट कलर की इंडो वेस्टर्न ड्रेस सिलेक्ट की थी। ये लड़की हर बार यहाँ कैसे पहुँच जाती है, तुम इसका कुछ कर नहीं सकती क्या? प्रेरणा जी ने दबी आवाज में लावण्या से कहा। मैंने इसे यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि उसे पता चल सके कि हम दोनों की सगाई हो रही है, पर ये हर बार मेरे प्लान पर मिट्टी डाल देती है, पता नहीं इस लड़की के मन में चल क्या रहा है, लावण्या ने सोचा। आंशी को वहां देखकर अमन भी काफी हैरान था। उसने लावण्या से पूछा, हमने डिसाइड किया था हम किसी बाहर वाले को नहीं बुलाएंगे, आंशी को तुमने यहाँ बुलाया क्या? मैंने उसे इनवाइट नहीं किया था, एक्चुअली मैंने कल गलती से इसे अपनी इम्पोर्टेंट फाइल दे दी थी और मुझे उसकी जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे लौटाने के लिए यहाँ आने के लिए कहा था, मुझे नहीं पता था ये इतना तैयार होकर आएगी, लावण्या ने जवाब दिया। आंशी और अर्जुन चेतना जी के साथ अंदर की तरफ आए। वहाँ इतना तामझाम देखकर आंशी ने पूछा, वैसे यहाँ क्या हो रहा है, कोई हवन या पूजा है क्या? हाँ, हवन और पूजा रखी गई थी पर वो हो चुकी है, लगता है तुम्हें पता नहीं आज तुम्हारे बॉस की एंगेजमेंट सेरेमनी है। जिस तरह से तुम तैयार होकर आई हो ऐसा लग रहा है तुम्हें यहाँ होने वाली सेरेमनी के बारे में पता था। प्रेरणा जी ने तिरछी निगाहों से आंशी की तरफ देखा। एक्चुअली हमारा मंदिर जाने का प्लान था, आपको तो पता है मंदिर वगैरह में ट्रेडिशनल पहनना ही अच्छा रहता है, इसलिए मैंने साड़ी पहनी, आंशी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने अपने मन में कहा, कितनी सफाई से झूठ बोल लेती है ये लड़की, बेचारी जिसे इम्प्रेस करने के लिए इतना तैयार होकर आई थी वो तो किसी और से सगाई कर रहा है। आई एम रियली फीलिंग बैड फॉर यू आंश। आंशी वहाँ अनवांटेड गेस्ट थी, उसने वो फाइल लावण्या को थमाई और वहाँ से जाने को हुई। तभी तेजो जी ने कहा, बेटा तुम यहाँ आ ही गई हो तो सेरेमनी अटेंड करके जाना, न नहीं दादी, फिर कभी, आंशी ने जवाब दिया। रुक जाओ, अचानक अमन ने कहा। उसके कहने पर आंशी ने रुकने के लिए हामी भर दी थी। अमन और लावण्या की सगाई सेरेमनी शुरू होने ही वाली थी। अमन की नज़रें ना चाहते हुए भी आंशी की तरफ जा रही थी। वहीं आंशी को भी उसकी सगाई का सुनकर बुरा लग रहा था। ये पहली बार था जब दोनों अपनी अपनी लाइफ में एक दूसरे की कीमत समझ पा रहे थे। 4000 पाठ पढ़कर समीक्षा जरूर करिएगा।